नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बात करेंगे इंडिया अलायंस की। भैया, ये इंडिया अलायंस में हो क्या रहा है? लोगों ने कहा था कि ये इंडिया अलायंस जो है वो इकट्ठा होके और नरेंद्र मोदी की बैंड से बैंड बजा देगा, लेकिन वो तो उल्टा ही रहा है। सर जी की और केजरीवाल जी की, इनकी तो स्थिति हम देख ही चुके हैं। आपको पता ही है कि आज तो हाई कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी वो भी एक तरह से रिजेक्ट ही कर दी। कहा कि भाई 2 अप्रैल को जवाब देंगे, उसके बाद सुनेंगे। तो इनका तो काम हो गया, लेकिन दूसरे काम जो और हो रहे हैं वो और भी ख़तरनाक है। सबसे पहले तो हम आते हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यूपी में क्या हो रहा है और पंजाब में तो अब कल से होना शुरू होगा। तो अभी तो केवल बिट्टू जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में और आज रिंकू जी भी आ गए। पता है ना आपको रिंकू जी कौन है? रिंकू जी आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद हैं जो उपचुनाव में जीत कर आए थे। जी हाँ, क्योंकि 2 उपचुनाव हुए थे। एक तो उपचुनाव हुआ था जब भगवंत मान ने रिजाइन किया था, उनके स्थान पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें तो सिमरनजीत सिंह मान जीत गया था, वो खालिस्तानी। और दूसरा उपचुनाव हुआ था जब एक सांसद महोदय थे, वो भारत तोड़ो यात्रा जब जा रही थी 1.0, तो उसमें उन्होंने वॉक किया हमारे प्रिंस लिंग के साथ में, राजकुमार के साथ में, और वो चलते बने, भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए हुआ था तो सुशील कुमार जी रिंकू आ गए उनके स्थान पर, वो इलेक्ट होके आए। जलंधर रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से इलेक्ट होके आए और आज वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। लीजिए साहब, तो ये तो साहब ले दे के आपने देख लिया कि हाल क्या हुआ हमारे केजरी भाई का और उनका। चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है साहब? महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है, दे आर प्लेइंग दी बिग ब्रदर और उन्होंने 22 सीटें अपने पास रखी हैं और 22 में उनके पास ये ऑप्शन है कि और किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। कह रहे हैं कि राजू शेट्टी को 1 सीट देंगे। 16 सीटें दी है कांग्रेस को और केवल 10 सीटें दी है शरद पवार को। अब आप ये देखिए भाई, हो क्या रहा है कि उन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए 17 सीटों पर और उन 17 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस कहती है हमारी सीटें हैं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल। इन 3 सीटों के लेके इतना ज़बरदस्त झगड़ा है कि संजय निरुपम, जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता फेस सब कुछ माने जाते हैं मुंबई में, उन्होंने ये धमकी दे दी कि वो पार्टी छोड़ देंगे अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तो बढ़िया है, चलने दीजिए। तो वैसे भी इस तरह के आपस में थुक्का फजीती चलती रहेगी तो बाकी कितना होगा। और शरद पवार जो है वो कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं, वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों से दुखी हैं। तो भाई जारब सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे से दुखी हैं तो महाराष्ट्र में होगा क्या? उसके अलावा एक वो वंचित बहुजन अघाड़ी है वहाँ की, VBA, प्रकाश अंबेडकर साहब जो डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं और जो पुरानी जो रिपब्लिकन पार्टीज हुआ करती थी ना, जो ओरिजिनल रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर अंबेडकर थी, उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप बने बहुत सारे, उनमें से एक जाकर अल्टीमेटली प्रकाश अंबेडकर की VBA बन गई। VBA जो है वो कह रहे हमको 9 सीटें दो। अब भाई लोगों को अपना इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाता है कि अब क्या करें कि साहब, अपने आप को समझते हैं कि साहब कि हनुमान जी की पूँछ तो हम ही हैं, कि हमारी वजह से हनुमान जी की पूँछ इतनी बड़ी हुई। तो VBA ने कहा 9 सीटें दो और 9 सीटें तो उनको कौन देता, आज तक तो 1 सीट जीते नहीं है। तो उन्होंने अपनी अलग से अनाउंस कर दी, बस अब वो अलग लड़ेंगे। तो हो गया भाई, भानुमति का पिटारा जो है वो पूरी तरह से बिखर गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और देखो तो आप, उससे भी बड़ा जो घटनाक्रम है वो चल रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कल जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले टीपू जानते हैं ना आप? हाँ जी, अखिलेश यादव जी का घर का नाम टीपू है, क्योंकि उसी से तो पता चलता है ना कि उनकी जो है वो सेक्युलरिज्म में कितनी बड़ी आस्था है। हमारा भारतीय जो सेक्युलरिज्म है वो है ही ऐसा। तो भारतीय सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि उसको एंटी हिंदू होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा था कि मुस्लिम को कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, उसको वोट उसी को देना है जो उसके मज़हब की बात करे। और उनका मज़हब ये कहता है कि भाई काफिर छोटा होता है, तो जो कोई काफिर को जब तक छोटा ना बताए, जब तक उसको अपमानित ना करे, जब तक उसको इंसल्ट ना करे, जब तक उसको धता ना बताए, जब तक उसके विरोध में काम ना करे, जब तक मुसलमानों का रौब ना गालिब करे, जब तक ये सारा काम नहीं करता तब तक वो मुसलमानों को प्रिय नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अम्बेडकर कह गए उनकी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में। अब ये काम जो है ये मुलायम सिंह को करने थे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी टीपू रख दिया। वैसे हमारे कुत्तों का नाम भी टीपू रखते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो टीपू जी जो थे वो आज़म खान से मिलने गए सीतापुर जेल में। अब यहाँ भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये आज़म खान फैमिली एक ऐसी है जिसमें आज़म खान, उनकी बीवी और उनका बेटा तीनों अलग अलग जेलों में हैं। आज़म खान सीतापुर जेल में है और उनके बेटे जो हैं वो हरदोई जेल में हैं, और जो उनकी बीवी हैं वो रामपुर जेल में है। और उनकी तरफ से फरियाद भी की जाती है कि सबको एक जगह रख दिया जाए। तो आज़म खां से मिलने गए, आज़म खां से कुछ बातचीत हुई होगी या नहीं हुई होगी, कुछ भी हुआ आज अचानक रामपुर में एक पत्र मिलता है साइन किया हुआ आज़म खां का, और वो ये कहता है कि मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह इल्तिजा की थी कि वे रामपुर से चुनाव लड़ें, क्योंकि रामपुर में पिछली बार बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ था, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए थे, और यह स्थिति तभी काबू में आ जाती है आ सकती है जब स्वयं अखिलेश जी चुनाव वहाँ से लड़ें। क्योंकि अखिलेश जी ने हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं रामपुर से चुनाव बायकॉट करने की अपील करता हूँ, लो कर लो बात। अब इतना होना पर्याप्त था या नहीं था, बताते हैं कि ये बात जो है, क्योंकि आज जब ये आप ये देख रहे हैं तो ये आज गुरुवार है, ये बात बताते हैं कि ये मंगलवार को ये बात आ गई थी। तो मंगलवार को तुरंत फुरत में कोई मौलाना हबीबुल्ला नदवी हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट की एक मस्जिद है उसको वहाँ भी, उसको भी जामा मस्जिद बोलते हैं, जामा मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट, तो वो पार्लियामेंट्री मस्जिद के जो इमाम हैं उनको साहब को पहुंचा दिया गया रामपुर में। आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, साथ में जो इनके ख़ास आदमी हैं रजा साहब, असलम रजा शायद है उनका नाम, तो वो रजा साहब जो है वो पहले उपचुनाव लड़े थे, हार गए थे घनश्याम लोध से, घनश्याम लोध बीजेपी से खड़े हैं, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और हबीबुल्ला साहब ने भी फॉर्म भर दिया, और अब जो है मज़े आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। उधर क्या किया साहब मुरादाबाद में, टीपू जी ने और भी भारी कंफ्यूजन कर दिया। पहली लिस्ट जब उन्होंने निकाली थी तो उसमें एसटी हसन, वर्तमान सांसद मुरादाबाद के, उनका नाम था। उन्होंने बाकायदे जी बाकायदे मंगलवार को पर्चा भर दिया। अचानक अनाउंस होता है मंगलवार की रात को कि साहब वहाँ का जो टिकट है वो कोई रुचि वीरा नाम की मैडम है, राजपूत हैं, उनको दे दिया गया है, और वो पहुँच गई सवेरे, और बुधवार को उन्होंने नामांकन कर दिया। और उसके बाद जब कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो बताते हैं कि चार्टर्ड प्लेन से उनको सिंबल पहुँचाया गया। तो अब चर्चा यह है कि भाई टीपू मियाँ ने जो अपनी जो सेफेस्ट सीटें थीं जहाँ से वो जीत सकते थे, यानी मुरादाबाद रामपुर, उनकी तो ऐसी तैसी कर ही ली है, और उनका इम्पैक्ट निश्चित रूप से संभल पे भी पड़ेगा कि संभल में वो शफीकुर रहमान बर्ख साहब जो हैं वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब उनके बेटे हैं, उनके बेटे के बताते हैं कि इतनी पकड़ नहीं है, तो वहाँ पर चूँकि वो पूरा का पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो आपको पता है जहाँ मेजॉरिटी होती है वहाँ आपस में लड़ती ही लड़ती, तो वहाँ वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाई जो योगी जी ने 80x80 का टारगेट रखा हुआ है उसको पूरा करने में हमारे टीपू भाई जो हैं वो पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। तो इंडी अलायंस जो है वो जैसा हमने पहले कहा था वही स्थिति उसकी हो गई है, अब वो पूरी तरह बन गया है भिंडी अलायंस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।